Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Vrindavan Chandra Radha Vrindavan Chandra Radhe Jaya Radha Kunja Bihari Radha Kunja Bihari Radhe Jaya Gauranitai 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 Gauranita Jaya Jaya Jagannath Jagannath Baladev Subhadra Jaya Jaya Prabhupad Prabhupad Prabhupada, Prabhupada. Sri Sri Radha Vrindavan Chandra ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Granth Raj Srimad Bhagavatam ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya Bhagavate Vasudevaya तो आज हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद से 19वें अध्याय से पढ़ रहे हैं राजा पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ श्लोक संख्या 37 भवान परित्रा तुमिहावतीर्णो धर्मं जनानां समयानुरूपम् वेनापचारा दवलोप्तमद्य तद्देहतो विष्णुकलासि वैन्य भवान् परित्रातुमिहावित्वतीर्णो धर्मं जनानां समयानुरूपम् वेनापचारा दवलोप्तमद्य तद्देहतो विष्णुकलासि वैन्य
तद्देहतो विष्णुकलासि वैन्य
भवान परित्रा तुमिहावतीर्णो धर्मं जनानां समयानुरूपम् वेनापचारादवलोप्तमद्य तद्देहतो विष्णुकला शिवैन्य जनानां समयानुरूपम् विनापचारादवलोकमद्य तद्देहतो विष्णुकला शिवैन्य बोलस्टर हरे कृष्ण भवान आप परित्रातुम उद्धार के लिए इह इस संसार में अवतीर्ण अवतार लेकर धर्मम धर्म जनानाम सामान्य लोगों का समय अनुरूपम समय तथा परिस्थिति के अनुसार वेण अपाचारात राजा वेण के दुष्कर्मों से अवलुप्तम लुप्त प्राय अद्य इस समय तत् उसकी देहतः देह से विष्णु विष्णु का कला अंश असि तुम हो वैण्य राजा वेण के पुत्र हे वेण पुत्र राजा पृथु आप भगवान विष्णु के अंश है। राजा वेण के उत्पाती कार्यों के कारण धर्म प्रायः लुप्त हो चुका था। आपने उचित समय पर भगवान विष्णु के रूप में अवतार लिया। निस्संदेह आप धर्म की रक्षा के लिए राजा वेण के शरीर से प्रकट हुए हैं। भगवान तात्पर्य भगवान विष्णु जिस प्रकार से असुरों को मारकर श्रद्धालुओं की रक्षा करते हैं उसका उल्लेख भगवद गीता में चौथे अध्याय में आठवें श्लोक में मिलता है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भक्त जनों का उद्धार और दुष्टों का नाश तथा धर्म का फिर से स्थापना करने के लिए धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। भगवान विष्णु अपने दो हाथों से असुरों को मारने के लिए गदा तथा चक्र धारण किए रहते हैं और अन्य दो हाथों में भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कमल तथा शंख धारण करते हैं। जब भगवान इस अवतार भगवान का अवतार इस धरती पर या इस ब्रह्मांड में होता है तो वे असुरों का वध तथा भक्तों की रक्षा एक साथ करते हैं। कभी कभी भगवान विष्णु भगवान कृष्ण या भगवान राम के रूप में प्रकट होते हैं। शास्त्रों में इन सभी रूपों का वर्णन मिलता है। वे कभी कभी भगवान बुद्ध के रूप में अपने शक्त्यावेश अवतार में प्रकट होते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है शक्त्यावेश अवतार जीवात्मा में निहित भगवान विष्णु की शक्ति के अवतार हैं। जीवात्माएं भी भगवान विष्णु के अंश हैं। किंतु वे उनकी उतने शक्तिमान नहीं होते। अतः जब कोई जीवात्मा विष्णु के अवतार के रूप में प्रकट होता है तो उसे भगवान द्वारा विशेष शक्ति प्रदान की जाती है। जब राजा पृथु को भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है तो उन्हें शक्त्यावेश अवतार मानना चाहिए जो भगवान विष्णु का अंश है और उनके द्वारा विशेष रूप से शक्ति प्रदान किया हुआ है। भगवान विष्णु द्वारा शक्ति प्रदत्त जीवात्मा विष्णु के अवतार के रूप में भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश देने के लिए होता है। ऐसा व्यक्ति भगवान विष्णु के समान ही कर्म करके तर्कों द्वारा असुरों को हराता है और शास्त्र के अनुमोदित भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश भी देता है। जैसा कि भगवद गीता में संकेत किया गया है, जब कोई अद्वितीय पुरुष भक्ति योग का उपदेश देता है तो हमें जान लेना चाहिए कि वो भगवान विष्णु तथा भगवान कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदत्त है। चैतन्य चरितामृत में अंतलीला सातवें अध्याय ग्यारहवें श्लोक में पुष्टि की गई है, कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन। जब तक किसी को भगवान द्वारा ईश्वर द्वारा विशेष शक्ति प्रदान न हो तब तक भगवान के पवित्र नाम की महिमा की व्याख्या वो नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसे शक्ति प्रदत्त पुरुष की आलोचना करता है या दोष निकालता है तो उसे विष्णु के प्रति अपराधी समझना चाहिए और वो दंडनीय है। भले ही ऐसे लोग नकली तिलक या माला धारण करके वैष्णव क्यों न बन लें, किंतु यदि वे शुद्ध वैष्णव की निंदा करते हैं तो भगवान उन्हें कभी क्षमा नहीं करते। शास्त्रों में इसके कई उदाहरण हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस चौथे स्कंद में हम देखते हैं कि राजा पृथु की कहानी चरित्र का वर्णन किया गया है और इसका इतिहास ऐसा था कि वेण राजा ने बहुत आतंक मचाया था और राजा ही जब आतंक मचाता है तो आप सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है। जब गवर्नमेंट ही चोर डकैतों से भरी हुई है तो राज्य में कैसी स्थिति हो सकती है, इसका अनुभव आज भी हम देखते हैं और तभी भी लोगों ने अनुभव किया था। लेकिन तभी का सौभाग्य ये था कि ऋषि मुनि अग्रगण्य हुआ करते थे और ऋषि मुनि फाइनल पावर उनके हाथ में हुआ करती थी। वो राजा को मार्गदर्शन भी करते थे और समयोचित स्थिति में उनको बहुत सारा सलाह देते थे राज्य की रक्षा करने के लिए। लेकिन इनका ऐसे हुआ कि इन्होंने इतना आतंक किया किसी के नहीं मानी उन्होंने। फिर ब्रह्म तेज जो होता है ना वो प्रकट हुआ। अभी तो कलयुग में ब्राह्मण ज़्यादा है नहीं, लेकिन ब्राह्मणत्व जो है ना वो बहुत शक्तिशाली होता है, या जो ऋषि लोगों का जो ऋषित्व होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है। हम कभी भी एक संत एक ऋषि एक मुनि या श्रेष्ठ ब्राह्मण की अवहेलना नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर भगवान की शक्ति होती है। भगवान उनके मुंह से भोजन करते हैं, भगवान उनको अपना अंग मानते हैं, उन्हीं की कृपा के द्वारा संसार का उद्धार होता है। तो जब ब्राह्मणों ने और ऋषियों ने ठान लिया कि अभी बहुत हो गया, अभी हमें इसका इलाज करना होगा, तो उनके केवल मंत्रों द्वारा वेण की मृत्यु हुई, कोई शस्त्र से लेकर काटा नहीं गया उसको। और इन ब्राह्मणों में ऋषियों में इतनी शक्ति थी, इतनी शक्ति होती है कि उन्होंने इस मृत शरीर का मंथन किया जैसे कोई दही का मंथन करता है, और उस मंथन के द्वारा राजा पृथु को जन्म दिया उन्होंने। एक साथ में कई काम किए, एक तो जो सबसे गंदी वस्तु है ना, उससे भगवान के अवतार को जन्म दिया उन्होंने। कितना कॉन्ट्रास्ट है ना, एक तरफ वेण जैसे पापी व्यक्ति का शरीर है जिसको तो लोग छूना भी नहीं चाहते, लेकिन संत लोग जो होते हैं ना, वो गंदी से गंदी स्थितियों से या गंदी से गंदी वस्तुओं से भी परम पावन परम पवित्र वस्तुओं को निर्माण कर सकते हैं। ये संत की शक्ति होती है, भगवान के द्वारा दी गई विशेष शक्ति संतों में होती है। इसलिए संत का संग जो है ना, वो मनुष्य जीवन की परम प्राप्ति है। जिसको संत की संगति प्राप्त होती है, या जिसको संत का परिचय होता है, या जिसको संत संग में रुचि होती है, आकर्षण उत्पन्न होता है, वो बहुत बड़े भाग्य का लक्षण है। तो राजा वेण के गंदे पापी शरीर से भगवान के शक्त्यावेश अवतार का जन्म हुआ। और एक इसके पीछे अध्याय है कुछ, उसमें एक पूरा अध्याय राजा पृथु के गौरव का वर्णन किया गया है, पूरा इतना सुंदर वर्णन किया गया उनका। हालांकि वो स्वयं विष्णु नहीं है, विष्णु के शक्त्यावेश अवतार हैं, फिर भी उनके अंदर इतने दिव्य गुण का वर्णन संतों ने ही किया है। तो हम देख सकते हैं कि एक संत क्या कर सकता है। अभी कलयुग में हमारे पास इतने संत नहीं है, हमारा नारद मुनि का दर्शन नहीं होता है या अंगिरा मुनि का दर्शन नहीं होता है, लेकिन उनके बराबरी के भी संत जो है वो हमारे बीच में उपलब्ध है, तो शायद कोई चमत्कार करते हुए नजर नहीं आएंगे आपको, या कोई डेड बॉडी से कोई नया जीव उत्पन्न करते हुए नजर नहीं आएंगे। और वो हर समय जरूरी भी नहीं होता है, पूरे इतिहास में एक ही बार तो है ना ऐसे, हर बार थोड़ी किसी के शरीर को मंथन करके नए नए लोगों को जन्म दिया गया है। एक घटना हुई है, और लेकिन आत्मा परिवर्तन करने का जो शक्ति है, करने की शक्ति जो है वो संतों के अंदर होती है। उसे किसी बाह्य चमत्कार के बिना वो करते रहते हैं और कर सकते हैं। लेकिन एक बात प्रभुपाद जी ने यहाँ पर तात्पर्य में अंत में लिखी है कि संतों की अवहेलना करना बहुत एक धोखादायक खतरनाक चीज़ हो सकती है, खतरे वाली चीज़ हो सकती है। क्योंकि भगवान को उनके जो संत होते हैं ना, वो इतने प्रिय होते हैं, वो सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन अपने प्रिय भक्तों को, संतों को त्याग नहीं सकते। उनके प्रति कोई अपराध हुआ तो उसको सहन नहीं कर सकते हो। तो अगर हम भगवान को चाहते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं, तो संतों का आदर हमें करना ही चाहिए, साथ साथ उनके अवहेलना, उनको कभी भी अपराध, उनका तुच्छ लेखना, उनको सम्मान नहीं करना, ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में कई उदाहरण है ऐसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल नारद मुनि गुजर रहे थे और वो नल कुबेर मणिग्रीव वहाँ पर स्नान कर रहे थे, तो लड़कियों ने होश संभाल कर अपने आप को छुपाया, लेकिन वो नशे में इतने चूर थे वो हिले ही नहीं वहाँ से, अपने कार्य को चलाते रहे। तो नारद मुनि जैसे संत ने विचार किया, इतने शरीर की नुमाइश करने का इच्छा है आपको, जाओ पेड़ बन जाओ। संत की हृदय, संत का हृदय कैसे होता है, लगता है कि कितने हार्श यानी कि कितने क्रूर शाप को बोला जा रहा है, लेकिन एक्चुअली संत का हृदय कभी भी शाप देने के भाव में रहता नहीं है। संत का हृदय हमेशा व्यक्ति के कल्याण के लिए रहता है। जैसे माता जब भी किसी बच्चे को चांटा मार देती है किसी चीज़ के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चे को घृणा करती है, उससे द्वेष करती है, उसे कभी पीटूं इसका वेट करती रहती है, वो केवल उसके कल्याण के लिए उस चाटा मारती है उसको, कभी दंड देती है, कभी बांध के रखती है, कभी मुँह में दीवार के करप मुँह करके खड़ा कर देती है। एक ही उद्देश्य है कि उसको संस्कार अच्छे मिले, उसका कल्याण हो, बुरी आदतें न लगे उसको। तो यहाँ पर भी लग रहा है कि अरे सबसे निचली योनि जो है पेड़, इसमें कोई संवेदना दिखती नहीं है, एक तरह से उसमें डाल दिया उनको उन्होंने, तुरंत वो फिर वो जो नशे में चूर थे एकदम होश में आ गए, उन्होंने माफ़ी मांगना शुरू कर दिया, तो तुरंत एक ऐसा वरदान दे दिया उनको। कोई बात नहीं, पेड़ तो बनना ही होगा आपको, लेकिन आप ऐसे पेड़ बनेंगे जो नंद महाराज के आंगन में होंगे। तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जब द्वापर युग का अंतिम समय आएगा तभी नंद महाराज के आंगन में कृष्ण भगवान डोलेंगे, उधर आप पेड़ बनोगे और सारी लीलाओं का दर्शन करोगे। जो बड़े बड़े देवताओं को, ऋषि मुनियों को भी प्राप्त नहीं होता है, वो दर्शन आप वहाँ खड़े खड़े करोगे। मतलब पेड़ की योनि में भी दर्शन करने की शक्ति दिया ना उनको उन्होंने। और अंतिम था शुद्ध भक्ति प्राप्त हुई उनको भगवान की कृपा से। लेकिन संत की अवहेलना, जाने अनजाने में, नशे में, मोह माया में, माया के जंजाल में होते हुए करेंगे तो उसका परिणाम तो होगा ही। हम ये नहीं कह सकते हमने तो बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी तो माफ़ कर देना, उस समय तो हमारा होश नहीं था, अब इतना कठोर मत बनना। नहीं, कैसे भी हो संत का अपराध होता है तो उसका दंड लेना ही पड़ता है। कई कथाएं हैं शास्त्र में। वो एक जाजली मुनि थे, जाजली मुनि, हाँ ऐसे संत थे वो, कि उनके आश्रम में उनके केवल होने से, उनकी साधना बल से, तपो बल से, भक्ति बल से, उनके केवल होने से ऐसा वातावरण निर्माण हुआ था कि सारे हिंस पशु जो थे वो उनके खाद्य के साथ में मैत्री कर रहे थे। मतलब शेर हिरण के साथ गले मिल रहे हैं, हाथी और सिंह गले मिल रहे हैं, खूंखार जानवर जो बाकी जानवर हैं उनसे गले मिल रहे हैं, ऐसा वातावरण, सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण था। तो उसमें हयग्रीव नाम के राक्षस का एक बालक, उसका नाम था उत्कल राक्षस, वो भी उसके, हयग्रीव तो आप जानते हैं, हयग्रीव को भगवान ने हयग्रीव का जन्म लिया और उसको मार दिया, उसका पुत्र था उत्कल, वो भी इतना शक्तिशाली था कि 100 स्वर्गीय साल तक उसने सारे देवताओं को परास्त करके, खदेड़ के उनको भगाकर उनके राज्य में राज्य किया था उन्होंने, उत्कल। तो साजिक रूपी से वो इतने मदमस्त हो गए, हाँ उत्कल, तो ऐसे आ गए एक बार घूमते घूमते जाजली मुनि के आश्रम में। उन्होंने ऐसे कई तालाब बना के रखे थे, उस तालाब के अंदर मछलियाँ भी थी, वो सब अपना सहज जीवन प्रेम से बिता रही थी। तो उसके पास एक मुरली जैसा एक दंडी थी, बांस, मुरली समझ लो उसको, तो ऐसा वो डाल के बैठ गया पानी में। तो मुर्गी मछली जो है वो कुतूहल से उनके मुरली में आने लगी, जैसे ही मछली आने लगी तो वो खाने लगा उनको, फिर रख दिया उसको, फिर कुछ मछली कुतूहल से आ गई तो फिर खा लिया उसको। उतने में जाजली मुनि वहाँ पर आ गए, उन्होंने कहा देखो ऐसे हमारे आश्रम में नहीं होता है, अब ये कार्य बंद करो, यहाँ पर कोई किसी की हत्या नहीं करता है, कोई खाता नहीं, कुछ नहीं, सब प्रेम से रहते हैं, आप उसका हमारे आश्रम का वातावरण की जो पवित्रता है उसको आप भंग कर रहे हो, बंद करो इसको। तो उसमें इतना मद था उनके सामने ही फिर दोबारा खा लिया उसको। तो साधु जैसे आते ही तुरंत ऐसा कठोर वचन बोल के शाप देते नहीं है, आपको मौका देते हैं, यू कैन इम्प्रूव, चांस दे रहे हैं आपको, होश में आ जाओ, कह रहे हैं आपको। नहीं आया उनको, उसने क्या एक साधु करेगा मुझे, देवताओं को 100 साल तक रोंद के रखा है मैंने, ये साधु क्या करेगा, भजन करता है, झाड़ पाला खाता है। तो उन्होंने कहा इतनी मछली खाने का शौक है, जा तू बगुला बन जा। तो वो बहुत सुंदर था, एक्चुअली था राक्षसी प्रवृत्ति का, लेकिन बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर मुकुट अलंकार राज वस्त्र पहनकर वो घूम रहा था, इतना सुंदर व्यक्ति अचानक बगुला बन गया। देखा अरे तो बगुला बन गया, सारा मद उतर गया एक एक क्षण के अंदर, एक वाक्य के बाद एक क्षण के अंदर वो बगुला बनना पड़ा उसको। तो चरणों में गिरा वो जाजली मुनि के, उन्होंने कहा माफ करना, अभी गलती किया हमने, आपको पहचाना नहीं, हमने हमने मद मस्ती का प्रदर्शन किया, माफ कीजिए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब श्री कृष्ण भगवान द्वापर के अंत में आएंगे तब उनके द्वारा आपका उद्धार हो जाएगा, तब आपके इस रूप से आप मुक्त हो जाओगे। भ्रष्टावक्र मुनि का किसी ऐसे राक्षस ने अपराध किया, अरे क्या शरीर है इसका, 8 जगह पर उसको बेंड है, अष्टावक्र वक्रता है, ऐसा मजाक किया उनका, तो उसको उन्होंने शाप दिया तो अजगर बन गया, तो वो अगासुर बन गया। ऐसे हर एक राक्षस की एक एक दास्तान है, वो बैल के भी ऐसी दास्तान है, हाँ हर एक व्यक्ति को ऐसे ऐसे एक एक शाप मिला हुआ है। लेकिन आप अगर आप गहराई में सोचेंगे कि साधु में कितनी शक्ति होती है, वो चाहते नहीं किसी को दुख देने का या कष्ट देने का, लेकिन अगर उसमें आपका उद्धार निहित है तो वो शाप देने में भी कचरते नहीं है। और अगर साधु कुछ नहीं करते हैं तो भगवान कर देते हैं फिर उसका काम, समझो। साधु बोलते ठीक है कोई बात नहीं, जैसे हरिदास ठाकुर जो है ना वो बेचारे भगवान चक्र लेके पैदा हो गए थे, उधर खड़े हो गए थे। चैतन्य महाप्रभु जो निर अस्त्र अवतार है एक दूसरे से, है ना, कोई अस्त्र वस्त्र लेके नहीं आए, वो चक्र को आह्वान करके खड़े हो गए वहां पर। अपने अवतार का जो मैंडेट था, जो रूल था, जो प्रोटोकॉल था, उसको तोड़कर वो चक्र लेके खड़े हो गए, इसको सर काट दूंगा अभी दोनों का, हाँ जल्लादों का। लेकिन वो करुणा कर रहे, करुणा कर रहे, करुणा कर रहे, वो भी प्रार्थना कर रहे इनको माफ करो माफ करो। भगवान भी असहाय हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको पश्चाताप का व्यवस्था भगवान ने किया, ऐसी व्यवस्था किया कि उनको होश में लाया भगवान ने। नवाब हुसैन शाह को भी लाया, काजी को भी लाया, जल्लादों को भी लाया और सब लोग को भक्त बना दिया। तो कई ऐसे उदाहरण भी है जब भक्त लोग नहीं उनको दंड देते तो भगवान दंड देते हैं। अभी भगवान ने इतना बड़े महाभारत का आयोजन किया, वो आतंकवादियों को दंड देने के लिए किया उन्होंने। पांडव लोग तो बेचारे सहन करते जा रहे थे एक के बाद, भीम थोड़े से क्रोधी थे, लेकिन बाकी सब लोग तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज हमेशा ठीक है कोई बात नहीं, टॉलरेट ऐसे करते थे। तो भगवान ने भी उनको बहुत मौका दिया, लेकिन भक्तों का अपराध होने के बाद भगवान शांत नहीं रह सके, उन्होंने पूरा नरसंहार कर दिया पूरा राक्षसों का। तो हमें देखना यह है कि हमें पता नहीं है कि हमारे बीच में कौन साधु बैठा हुआ है। हम सोचते हैं कि ये तो हमारे बाद में आया है, हमने उसको प्रचार करके मंदिर में लाया है, हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कई सन्यासियों, आज जो सन्यासी है उसमें से किसी को हमने प्रचार करके मंदिर में लाया हो और वो हमारे आंखों के सामने आगे बढ़कर सन्यास लेकर अभी बहुत ऊंची स्थिति में हो सकता है। लेकिन वो हम तो एक निमित्त हो सकते हैं किसी को लाने में या अंदर प्रवेश कराने में, लेकिन साधु जो होता है ना वो जन्म जन्मांतर से अपनी तपस्या करते हुए अपनी यात्रा करते रहता है। जैसे भगवान भी जन्म लेने के समय देवकी का गर्भ का सहारा लेते हैं और जन्म लेते हैं, उनको जरूरत नहीं लेकिन वो एक माध्यम है उनका। उस तरह साधु को भी अपना कार्य आगे बढ़ाने के लिए किसी के माध्यम से संप्रदाय में प्रवेश करना होता है, लेकिन साधु साधु ही होता है हमेशा। हम तो केवल निमित्त मात्र सेवा के रूप में आ सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि किसी भी भक्त का जजमेंट नहीं करना चाहिए, ये जूनियर है, ये सीनियर है, ये ऐसा है, ये वैसा है। हाँ, अगर हम आपके उसके काउंसलर है, उसका अगर शिक्षा गुरु है तो उनको आप हेल्प कर सकते हो एक कर्तव्य के रूप में, लेकिन मन से आपको वो सोचना चाहिए कि कितना पतित भक्त है ये, इसको क्या करें, हम पीटें उसको कि क्या दंड दें उसको। सेवा के भाव में करना चाहिए, जैसे माँ चाटा लगाती है तो वो घृणा से लगाती नहीं है, वो कल्याण की भावना से लगाती है। वैसे अगर भक्त में कोई दोष दिखता है तो हम अगर उसके अधिकारी हैं उस प्रकार के, अगर है तो केवल, तो हम उनको गाइडेंस दे सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। लेकिन आम तौर पर किसी भी भक्त के प्रति द्वेष भावना, घृणा भावना नहीं होनी चाहिए। एक बेस लाइन अंडरस्टैंडिंग हमारा होना चाहिए। जब हम भक्ति में आते हैं तो हमको ये भावना यहाँ पर सीखनी चाहिए भक्तों के समुदाय में कि कितने भी दोष दिखेंगे उनके अंदर तो हमें उनके प्रति एक अंदरूनी घृणा भावना नहीं रखनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए अपने आप को ये संस्कार देने की कि भक्त कैसा भी हो वो गौरवशाली होता है। जो दो प्रकार के मरीज होते हैं ना, एक अस्पताल में होता है, एडमिट होता है डॉक्टर के अंदर, और एक को पता नहीं कि मैं बीमार हूँ और रोड पर घूमते रहता है। तो आप देखेंगे रोड पर भी जो मरीज है वो भी खांस रहा है और जो हॉस्पिटल में एडमिट है वो भी खांस रहा है, तब ले इसमें अंतर क्या है? नहीं, एक ट्रीटमेंट के अंडर है और एक ठीक होने वाला है, क्योंकि वो सही डॉक्टर, सही अस्पताल, सही नर्स के बीच में अपना इलाज करा रहा है और आज उसको खांसी आ रही है, वो ठीक होने के रास्ते पर है, एक दिन निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा और आम आदमी की तरह घूमेगा। तो हमें देखेंगे कि भक्त में कितने दोष हैं, कितना द्वेषी है, कितना ऐसा है, कितना क्रोधी है, कितना झगड़ालू है, ऐसा हम देखेंगे। लेकिन क्योंकि वो मंदिर में है, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के छाया क्षेत्र में है, तो वो एक दिन संत बनेगा, नहीं तो ब्रह्मा जी उनकी पूजा की तैयारी क्यों करते हैं? बोलते बहुत देर है अभी पूजा के, मैं बाद में करता हूँ, इतने सारे दोष भरे हुए हैं अभी, बहुत टाइम लगेगा उसको। जिस समय वो हरिनाम लेने का शुरुआत करेगा उसी समय ब्रह्मा जी ब्रह्मा लोक में उसकी आरती पूजा की तैयारी करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो भगवान का नाम लेने वाला भक्त जो है वो निश्चित रूप से एक दिन गौलोक धाम जाएगा और जाएगा तब ब्रह्मलोक से गुजरते हुए जाएगा, तो मैं उसकी पूजा करूंगा। ऐसे हमारे ब्रह्मांड के प्रथम नागरिक जो है ना, फर्स्ट सिटीजन ब्रह्मा जी सोच रहे हैं। तो अगर इतने महान व्यक्ति ऐसा सोच रहे हैं, उनकी सोच इस प्रकार की है, तो हमारी सोच तो उसके अनुकूल होनी चाहिए। और ये एक्चुअली प्रभुपाद जी बताते थे कि अगर आप 16 माला रोज ध्यान पूर्वक करेंगे और किसी भक्त का अपराध नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से मैं आपको गोलोक धाम में ले जाऊंगा। तो यही फॉर्मूला है, भगवान के नाम का ध्यान पूर्वक जप करना और कभी भी किसी भक्त का अपराध नहीं करना। ये दो चीज अगर हम कर पाते हैं तो हम निश्चित रूप से इस जन्म के अंत में भगवान के पास चले जाएंगे। और संत में एक शक्ति ये होती है कि वो कभी भी आपको आपको अनाकल नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा ऐसा कार्य कर सकते हैं। आप उनको अगर समझेंगे क्या कर सकता है ये दुबला पतला आदमी, ऐसा सोचेंगे आप, तो या तो वो स्वयं या तो भगवान उसके लिए हमारे जीवन में कुछ भयंकर चीज घटना हो सकती है। क्योंकि संत को भगवान इतना चाहते हैं, तो संत के डरना नहीं चाहिए उनको, लेकिन उनके अपराध से डरना चाहिए जरूर। क्योंकि हम संत भी एक बार अगर अपना अपराध स्वीकार कर लेगा और नहीं कुछ करेगा, लेकिन भगवान नहीं छोड़ेंगे उसको, उस व्यक्ति को। आप जानते हैं ना अम्बरीश महाराज नारद मुनि की कथा में, अम्बरीश महाराज ने कुछ नहीं किया उसको, लेकिन भगवान ने नहीं छोड़ा उसको। अम्बरीश महाराज तो एक साल खड़े रहे हाथ जोड़कर, हमारा अतिथि कहाँ गया, एक साल तक और उन्होंने उपवास रखा। संत ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार वो आचमन किया, एक तरह से पारण भी किया, पारण भी नहीं भी किया, और फिर अतिथि का इंतजार कर रहे कि वो आएगा, भोजन कराएंगे, फिर हम भोजन करेंगे। तो ये एक साल तक तो चक्रवर्त के पीछे लगे हुए हैं, और भगवान के पास पहुंच गए दुर्वासा मुनि। तो भगवान ने क्या जवाब दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो ब्रह्मा जी ने कहा, शिव जी ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये उनके और आपके बीच की बात है, आपने उनके भक्त का अपराध किया है, समझ सकते हैं। लेकिन जिनका चक्र है वो भी यही कह रहे हैं कि आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे भक्त का अपराध होने पर जब मेरे उंगली से चक्र निकल पड़ता है, तो उसको वापस लाने की शक्ति मुझ में नहीं है, उस भक्त की शक्ति है, वो भक्त के अंदर शक्ति है, अगर वो मानेगा तो चक्र वापस आ सकता है। तो बेचारे कैलाश ब्रह्मालोक वैकुंठ की यात्रा करके दोबारा पृथ्वी की यात्रा करनी पड़ी उसको, तो एक साल चला गया उसका, तब तक चक्र लगे रहे पीछे उसके, लगे रहे, छोड़ा नहीं उसकी पीठ उसने। जब अम्बरीश महाराज के चरणों में गिरे और अम्बरीश महाराज ने उनको हृदय से कहा कि मैंने अपराध तो लिया ही नहीं है, उस समय चक्र जो है वो चले गए। तो हो सकता है आप सोचेंगे अम्बरीश महाराज क्या कर लेगा मेरा, मैं तो दुर्वासा में नहीं हूं, एक जटा तोड़कर मंत्र बोलूंगा तो भस्म कर दूंगा उसको। वो व्यक्ति निर्माण भी किया उसने, लेकिन उसका भी नाश हो गया, और स्वयं जान की बचाने के लिए उनको भागना पड़ा। ऐसे शास्त्र में और भी कई उदाहरण हैं। संक्षेप में कहना यह है कि वी शुड नॉट टेक सेंटली पीपल लाइटली एंड फॉर ग्रांटेड, उनको ऐसे तुच्छ समझकर उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति, एक तो संत है तो उसका आदर करना ही चाहिए, लेकिन जो भी व्यक्ति ने अगर भगवत परायण होने का जीवन अपनाया है, उसका लक्ष्य भगवत परायण होना है, भगवत सेवा परायण होना है, भगवत भक्त परायण सेवा परायण होना है, तो उसका आदर करना ही चाहिए। वो किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, वो श्रद्धा स्थिति में हो, अनाथ निवृत्ति स्थिति में हो, या दोषपूर्ण स्थिति में हो, या मुक्त निष्ठा स्थिति में हो, हर स्थिति में उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर वो पोटेंशियल है, वो शक्ति है कि एक दिन वो संत बनेगा और जगत का उद्धार करेगा। और दूसरी बात, संतों के अंदर एक विशेष शक्ति होती है, वो बुरी सी बुरी स्थितियों में से सर्वोत्तम पवित्र स्थिति को निर्माण कर सकते हैं। मोस्ट होपलेस कंडीशन, हाँ, जो निराशा उत्पन्न कर सकती है, ऐसे स्थिति में वो बहुत सुंदर आशा का वातावरण निर्माण कर सकते हैं। दे कैन क्रिएट दैट होप इन द मोस्ट होपलेस कंडीशन। जैसे वेण का शरीर है ना, वेण जैसे व्यक्ति का होना, जीवित रहना, मर जाना, हर तरह से अशुभ है वो, है ना। वो लोग जीवित होने पर भी परेशान थे, वो मरने के बाद भी परेशान थे, अभी क्या होगा हमारा आगे, राजा तो ऐसा निकला। लेकिन संतों की शक्ति देखिए आप, उसी के शरीर से उन्होंने भगवान के अवतार को प्रकट कराया। अभी आप कहेंगे भगवान की शक्ति तो इसमें है, भगवान की इच्छा है, सब कुछ है, लेकिन कराया किसके माध्यम से, संतों के माध्यम से। भगवान भी ऐसे होते हैं ना, वो महाभारत का पूरा युद्ध बनाया उन्होंने पूरा, लेकिन लड़वाया किसको? अर्जुन को। और श्रेय किसको दिया? अर्जुन को। जानबूझ के कहा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं सारथी बनकर रहूंगा, खाली गाइडेंस दूंगा आपको बीच बीच में। क्यों कर रहे वो ऐसा? वो तो ऑलरेडी युद्ध का नतीजा निकला हुआ था, सब भगवान को सब पता था, भगवान ने बता भी दिया था, लेकिन फिर भी अर्जुन का क्या कहते हैं, माम अनुस्मर युद्ध च, सारा श्रेय तुम लेके जाओ, वो भक्तों को ही देना चाहते हैं। इतना प्रेम करते हैं भगवान कि अपने स्वयं का श्रेय जो है वो भी अपने भक्तों को देते हैं। वो कितने महान भगवान है हमारे। कभी कभी भगवत गीता सुनते लगता है हमको कि अहम सर्व प्रभवो मत्ता सर्व प्रवर्तते, कितना गर्व है भगवान को अपने ऊपर कितना अपने आप का ही गौरव कर रहे हैं वो, कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही स्रोत, मैं ही निर्माण करता हूँ, मैं ही विध्वंसक हूँ, मैं ही रक्षण करता हूँ, मैं ही श्रोता हूँ, मैं ही निर्माण करता हूँ, कितना मेरा ही शरण ले लो, मुझे ही प्रार्थना करो, मेरे ही मुझे ही नमस्कार करो, मुझे ही सेवा करो, सब कुछ मुझे ही अर्पण करो, मैं और मैं, ऐसा लगता है। और द्वेषी लोग उसको पकड़ लेते हैं, मतलब कितना दर्प दिखा रही पड़ रहा है इसके अंदर, जगम कदम कदम पे श्लोक श्लोक में अध्याय अध्याय में खुद का गौरव कर रहे हैं, कितने अहंकारी है भगवान। लेकिन एक होता है सत्य और एक होता है अहंकार। अगर मैं मेरे बालक को कहूँ कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरे उंगली पकड़ के चलना, ये मेले में खो जाओगे आप, तो बोले कितना अहंकारी व्यक्ति है ये। अरे अहंकारी व्यक्ति नहीं, वो सत्य है, मैं उसका पिता है ये भी सत्य है, और उसका रक्षा मेरे उंगली पकड़ने में है ये भी सत्य है, और उसकी बालक के कल्याण के लिए मैं वो कहूँगा उसको, यहाँ वहाँ भटकना नहीं, कहीं भी देखो गुब्बारे को देखो या गेंद को देखो, लेकिन ये उंगली को नहीं छोड़ना है आपको, सारा रहस्य उस आपका रक्षा का जो है ये उंगली में छुपा हुआ है। क्योंकि ये सत्य है, अहंकार से अधिक ये करुणा और सत्य है। करुणा बालक के प्रति जिसकी रक्षा करनी है, और सत्य भी है वो कि आपकी सुरक्षा मेरे हाथ में। तो भगवान उस भावना से बता रहे हैं, द्वेषी लोग अलग भावना से देखते हैं उसको। तो वही भगवान जो अर्जुन को करुणावश सब सत्य बता रहे हैं, ऐसे जो अहंकार वाले दिखते हैं, वो भगवान ने महाभारत का पूरा युद्ध किया, और तब उनको मौका था ना अपना अहंकार दिखाने का कि भाई देखो मैंने सब कुछ किया है, लेकिन उन्होंने सारा श्रेय भक्तों को दिया। तो ऐसे भगवान अपने भक्त पर इतना प्रेम करते हैं, इसलिए भक्तों के अपराध से डरना चाहिए कि भगवान अपने भक्त पर कितना प्रेम करते हैं। वो अपने आप को मिटाकर भी अपने भक्त का गौरव करा सकते हैं, ऐसे प्रेमी भगवान है हमारे। इसलिए इनका पूजन करना चाहिए कि हमारा परम भाग्य है कि हमारे भक्त भगवान इतने प्रेमी भगवान है। वो क्या कहते हैं, वो सत्यव्रत मुनि बताते हैं ना कि मैं जब यशोदा मैया के हाथ से बंधा जा रहा हूँ, तो मैं दिखाना चाहता हूँ जो मेरी तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं और त्याग कर रहे हैं, संन्यास्त वृत्ति में कर रहे हैं, ज्ञानार्जन कर रहे हैं, वैराग्य उत्पन्न कर रहे हैं, वो सबको मैं बताना चाहता हूँ कि इन सब माध्यम से आप मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो, मैं प्रेम का बंधन में फंसना चाहता हूँ। योगी ध्यानी तपस्वी जितने लोग हैं वो सब अनंत जन्मों तक तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, फिर भी मेरे 20 नाखूनों से निकलने वाले अनंत किरणों में से एक भी किरण का दर्शन उनको नहीं होता है, और वही मैं जिनके चरणों के निकले वाले एक किरण भी दर्शन करना मुमकिन नहीं है, वो एक मैं माता के हाथों से बंधा जा रहा हूँ, जो सब भय जो है मूर्तिमान वो भी मुझसे भयभीत है, लेकिन मैं माता की डंडी को देखते कांपता हूं, है ना। भय जिससे भयभीत है, वो आकाश में जब बादल गड़गड़ाहट होती है तो भागकर मैया की गोद में आते हैं, डर लग रहा है बहुत। और इसी भाव पर जब भी गोवर्धन लीला चल रही थी, तो 84 खंभा जो बैठक है नंद बैठने की बात करने की, तो वहां पर बैठकर वो सब लोग बोल रहे, अरे नंदा तुम्हारा बालक तो बड़ा देवता है, वो ऋषि होगा, कोई तपस्वी होगा, कोई ऐसा होगा, कोई वैसा होगा, कोई बड़ा देवता होगा, ये तुम्हारे घर पे पैदा हो गया है, तुम कितने भाग्यवान हो। तो वो एक एक बात को काटते जाते हैं, बोले ये देवता है, ये देवता कैसे हो सकता है, ये जब देवता लोगों को कितनी जबान में अपने कंट्रोल होता है, इसको माखन मिलेगा नहीं तो जाके किसी के घर में जाके बच्चे को चिमटा निकालेगा, कान में पानी डालेगा, उसको नींद से जगा देगा, या तो पेशाब कर देगा घर में उनके। देवता लोग ऐसा करते हैं क्या कभी? और रही ऋषि मुनि बात, कितना क्रोध आता है उसको, जरा सा दुग्धपान छोड़ दिया तो जाके मटका तोड़ के पूरा घर में फैला दिया, पूरा आतंक मचा दिया, बंदरों को खिला दिया। ये कोई ऋषि के लक्षण है? हाँ, तो एक बात ऐश्वर्य की हो रही ना कि ऋषि होगा, देवता होगा, ऐसा होगा, और एक माधुर्य की बात हो रही है, उसको काटते जा रही है बात। तो माधुर्य बलवान है ऐश्वर्य के सामने। हाँ, और भगवान भी वो माधुर्य ही चाहते हैं, वो अपना ऐश्वर्य का गुणगान वृंदावन में नहीं करना चाहते, प्रेम के भूखे हो। और अंत का इसका निर्णय क्या हुआ ये मीटिंग में? बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, नंद बाबा ने सारी बात काट लिया और सब लोग पेट पकड़ पकड़ के ऐसे लोटपोट हो गए हंसते 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 कि सब भूल गए कि ये देवताओं के बारे में सोच रहे थे कि ऋषि के बारे में सोच रहे थे। इतना प्रेम करते हैं भक्त पर अपने वो। अगर कहीं मेरी ऐश्वर्य की बात मान लेंगे, ये इनका होगा रेजोल्यूशन कि भाई ठीक है कोई ऋषि होगा, तो कल से सम्मान करना आरम्भ करेंगे, मेरा पूजन करेंगे और क्या क्या करेंगे। वो नहीं चाहते थे वो। उनको भक्त के हृदय में जो माधुर्य प्रेम छुपा हुआ है उसका वो आस्वादन करना चाहते हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि उनका ऐश्वर्य गान हमेशा ढका रहे या नष्ट होता रहे या तो प्राप्त नहीं होगा उनको। ऐश्वर्य गान भक्तों को होता है तो भक्तों को, भगवान को भक्तों के द्वारा प्रेम की अनुभूति पूरी तरह से नहीं हो सकती। इसलिए कुंती देवी या पांडव या जो वहाँ के भक्त जो हैं उनके साथ में वो आदान प्रदान नहीं होता है जो यशोदा मैया और ग्वाल बाल, सुबल सखा और राधा रानी गोपियों से होता है। डिफरेंस क्या है उसमें? क्योंकि अर्जुन कुंती जैसे लोगों को भगवान के ऐश्वर्य का पूरा ज्ञान है कि ये परम भगवान है, और वहाँ पर किसी को पता नहीं है कि ये भगवान है। इसलिए वहाँ पर ज़्यादा भगवान अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं और उनको कराते भी हैं। तात्पर्य क्या है कि भगवान अपने भक्त पर कितना प्रेम करते हैं और उसकी वजह से उनको वो शक्ति प्राप्त होती है कि उनके हाथ से कई भयंकर चमत्कार हो सकते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में भी बहुत सुंदर दिव्य वातावरण भगवान के भक्त निर्माण कर सकते हैं। मैंने देखा है, मैं एक बार गुरुदेव के साथ में कुरुक्षेत्र गया था वृंदावन से। और क्यों गया था? क्योंकि वहाँ एक परिवार है, भक्त परिवार है, उनके घर में एक एक्सीडेंट हुआ था बड़ा, और उस एक्सीडेंट में एक ही परिवार के चार लोग गुजर गए थे, बाकी चार लोग इंजर्ड थे, बहुत बुरी तरह से इंजर्ड थे, यानी कि घर में एक वार्ड बन गया था। सब लोग ऐसे प्लास्टर लगा के लटका हुआ, पैर ऐसा, हाथ लटका हुआ, ऐसे ऐसे भयंकर स्थिति थी घर में। और वैसे घर के कर्तव्यगार चार पुरुषों का डेथ हो चुकी थी उस एक्सीडेंट में, कितना भयंकर एक्सीडेंट होगा। और उन सबकी माता जो थी वो दीक्षित थी गुरुदेव के द्वारा, तो हम लोग उनको मिलने गए वहाँ पर। इतना मायूस वातावरण था, इतना, मैंने पूरा वो लिख के रखा है, पूरा एक चैप्टर लिखे रखा है बड़ा एकदम मेरे अनुभूति का। इतना ऐसा क्या कहते हैं उसको, नेगेटिव एटमॉस्फेयर था, दुखी वातावरण था, सब लोग ऐसे मायूस थे, सब लोग क्या कहे अभी, क्या, मुझे लगा था अभी क्या करेंगे, इतने चार लोगों की डेथ, चार लोग घर में ही एडमिट, ऐसे सब स्थिति में क्या करेंगे, क्या अभी कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मैं तो कुतूहल में था। तो जैसे ही गुरुदेव पहुँचे उन्होंने बात करना शुरू किया और इस स्थिति में लाया एक दिन के अंदर उनको कि सब लोग झूम झूम कर कीर्तन में हंस रहे हैं, सब लोग, सोच सकते हैं हम। वो सारा परिवर्तन जो है ना जिस तरह से हुआ वो मैंने मेरे आंखों से देखा कि किस स्थिति से वो किस स्थिति में उनको सारे परिवार को लेकर आए। शाम तक सब लोग हंस रहे हैं, आपको पता ही चलेगा ना, आप अगर उसके बाद में एंट्री करते तो आपको पता ही चलेगा ना इस घर में डेथ हुआ है क्या, कोई कुछ हुआ है क्या। वो जो लटके हुए पैर से एडमिट थे घर में वो भी हंस रहे हैं, और बाकी जो अच्छे हैं वो भी हंस रहे हैं, सब कीर्तन कर रहे हैं, बाद में सबने प्रसाद लिया, भगवान की आरती पूजा भी किया, बहुत सुंदर हारमोनियम मृदंग से लेके नृत्य करते हुए उन्होंने आनंद को अनुभव किया। तो दुख भरे स्थिति में जो जैसे कि शोकपूर्ण स्थिति है किसी के अंत होने के बाद की, उसमें भी आनंद का इंजेक्शन दे सकते हो। इसका मैंने आंखों देखा, हाल देखा हुआ, फर्स्ट हैंड प्रूफ देखा है मैंने। तो मुझे बहुत प्रेरणा हुई कि इसको लिखना चाहिए, क्योंकि ऐसा अनुभव हर जगह पर हर बार उपलब्ध नहीं होता है कि एक सत्य अपने केवल उपस्थिति से एक ऐसी चमत्कार कर सकता है, केवल होने से। कई बार हमारे जीवन में ऐसे होता है कि हमको बहुत सारी समस्या होती है और हमको लगता है कि अभी गुरु महाराज को मिलना चाहिए, अभी बस अपॉइंटमेंट लेके, अभी उनके सिवा भी उसका नतीजा कौन निकालेगा, मिलना ही चाहिए उनको जाके। और फिर बड़ा प्रयत्न करके फिर मिल जाती है अपॉइंटमेंट, हम लोग फिर ये लिस्ट बनाते हैं कि अभी ये 15 प्रॉब्लम में जो है एक एक करके बताऊंगा और एक समाधान ढूंढूंगा उनका। और जैसे ही उनके कमरे में प्रवेश करते हैं आपको लगता है अभी कौन सी समस्या बोलूं, समस्या लगता ही नहीं कि है अभी समस्या। जिस त्रस्त भाव से मैं आ रहा था अंदर, वो भी त्रस्त भाव अचानक गायब हो गया एकदम। अभी लगता है कि अभी बैठ के दंडवत प्रणाम करूँ, थोड़ी बातें करके चला जाऊँ, कोई समस्या है ऐसा अभी अनुभव ही नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि संत के आत्मा में वो एक आध्यात्मिक सुकून या आध्यात्मिक अनुभूति का एक वातावरण रहता है। हम लोग क्या कहते हैं उसको, वो गुरुवाष्टक में कौन सा श्लोक है वो, जिसमें कहते हैं कि गुरु जी का हृदय जो है वो हमेशा गुरुदेव का आनंद से भरा रहता है, कौन सा श्लोक है वो? हाँ, एक आप देखिए बाद में, उसमें ऐसा वर्णन है कि जहां भी गुरुदेव रहते हैं वहां आनंद का वातावरण रहता है, हमेशा दिव्य आनंद की अनुभूति करते रहते हैं। तो उस वातावरण में, उनके ऑरा कहते हैं उसको, उसके उनके फील्ड में, उनके क्षेत्र में, प्रभाव क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो उसका परिणाम आपके आत्मा पर होगा। और आप शायद कष्ट में होंगे तो आपका कष्ट मिट जाएगा और उसका प्रभाव आपके आत्मा पर होगा। इसलिए उनके सानिध्य में जाते ही आपको शांति का अनुभव होता है और दुख दूर भागते हुए नजर आते हैं। ये संत की विशेष शक्ति होती है। उनके संग में जाने से पूरा दुख निवारण होता है। जो शुद्ध भक्ति का आचरण करने वाले संत होते हैं, शुद्ध भक्ति क्या करती है, पहले क्लेशाग्नि सारे क्लेश को मिटा देती है। वैसे शुद्ध भक्ति करने वाले व्यक्ति के पास आप जाएंगे तो भी आपके क्लेश नष्ट हो जाएंगे और फिर आनंद का अनुभव होता है, सांद्रानंद विशेष आत्मा। तो जो शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण रूप गोस्वामी ने बताए हैं वो शुद्ध भक्त के अंदर भी आपको मिलेंगे, उनके सानिध्य में वही परिणाम मिलेगा आपको। इसलिए शुद्ध भक्त का सहारा बहुत आवश्यक है, संत का सहारा, संत का संग बहुत आवश्यक है। क्योंकि जीवन जो है ना वो पूरा कष्ट से भरा हुआ है। जीवन जैसे वेण राजा होते हुए प्रजा कैसी थी, वैसा हमारा जीवन है एक्चुअली। कदम कदम पर कष्ट है, कदम कदम पर पीड़ा है, हर चीज में कष्ट है। कोई भी चीज सुख भी मिलता है तो भी दुख से मिश्र होकर मिलता है। जैसे खीर मिल जाएगी आपको, थोड़ा रेती गिर जाएगी उसके अंदर, तो खीर तो मिली है, खाने की इच्छा भी है, लेकिन वो रेती निकालूं कैसे निकालूं, फिर भी कोई दाना बीच में आ जाएगा तो फिर उसका आनंद जो है खत्म हो जाता है। बहुत दिव्य स्वादिष्ट खीर मिल रही है लेकिन आते ही हवा का झोंका आता है, थोड़ी रेती गिर जाती है उसके अंदर। ये प्रत्यक्ष अनुभव है जीवन का। आप कुछ भी सुख के लिए प्रयास करो, आपको सुख मिल भी जाएगा समझो, लेकिन वो मिलेगा एंड में आपको थोड़ा सा मिक्सचर के साथ मिलेगा। तो भौतिक दुनिया ही ऐसे बनाई है भगवान ने। तो राजा वेण जैसा राजा होने की भी जरूरत नहीं है एक्चुअली, वो तो एक आतंकवादी स्थिति है जिसमें उस प्रजा को दुख भोगना पड़ा। लेकिन सो कॉल्ड तथाकथित अच्छी भी स्थिति होगी फिर भी आपको प्योर सुख कभी नहीं मिलेगा किस चीज़ का, कभी भी नहीं मिलेगा। बहुत दिन के बाद में आपके बेटे का विवाह हो रहा है तो विवाह में भी आपको कष्ट आएगा और सुख दुख का मिश्रण आएगा, कभी खुशी कभी गम। लेकिन कभी खुशी कभी गम नहीं, खुशी और गम साथ साथ ऐसे ही अपना जीवन का लक्षण है। तो ऐसी स्थिति में जीव का स्वभाव क्या है, आनंद मयोभ्यासात। तो वो कैसे अपने स्वभाव को प्राप्त करेगा, कैसे अपने मूल स्थिति को अनुभव करेगा? तो केवल संतों के संग में ही वो जीव की मूल स्थिति का अनुभव जीव को हो सकता है। जितना समय आप संग में हो या जितना समय एक शुद्ध भक्त की आज्ञा पालन के कार्य में हो, तब तक आप उस आत्मा की मूल स्थिति का अनुभव खुद कर सकते रहते हो। आप लोगों में से कितने लोगों को ऐसा अनुभव है कि जैसे ही आप गुरु जी की सेवा में लग जाते हो उससे उतना समय आप अलग स्थिति में रहते हो, और जैसे ही खुद के लिए कुछ सोचना लगते हो दुख का प्रारंभ हो जाता है। स्वार्थ का परिणाम प्योर दुख है, असंत के संग का परिणाम प्योर सुख है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक हमको संत का संग करना चाहिए। संत का संग की व्यवस्था भगवान ने करके रखी है। जैसे हमारा जन्म होता है ना, तुरंत ही हमारे जीवन में मनुष्य जन्म लेते लेने के उसी क्षण आपके लिए संतों का संग और आपके लिए गुरु की व्यवस्था भगवान करके रखते हैं। चाहे आप बड़े से बड़े आतंकवादी रूप में इस दुनिया में जन्म लिया हो, ऐसे देश में ऐसे धर्म में ले लिया हो, लेकिन उसके लिए भी भगवान, क्योंकि भगवान का पुत्र है ना, चाहे वो बाहरी दृष्टि से कोई अलग धर्म में अलग आतंकवादी भाव में आता होगा जन्म लेकर परवरिश प्राप्त करता होगा, लेकिन उसके लिए भी भगवान ने व्यवस्था करके रखी है। वो उस व्यवस्था का लाभ लेता नहीं है, वो उसकी बात है, उसका चॉइस है। लेकिन जिस जिस मनुष्य मनुष्य ने जन्म लिया है मनुष्य के रूप में इस दुनिया में, उसके लिए भगवान ने सत्संग का और संग शुद्ध भक्त के संग की व्यवस्था भगवान उसी समय करते हैं। केवल वक्त की देरी होती है कब उनकी मुलाकात होगी और कब उनका सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेकिन व्यवस्था भगवान करके रखते हैं। नहीं तो भगवान जो खुद बोल रहे हैं तद्विति प्रणिपते ना, कि आपको शुद्ध भक्त के संग में जाना होगा, उनके पास बैठना होगा, प्रश्न करने होंगे, शरणागति दिखानी होगी, और वो शुद्ध भक्त का व्यवस्था ही नहीं आपके लिए, तो श्लोक तो खोखला हो गया ना। आपने शुद्ध भक्त के साथ करना क्या है सब बता दिया, लेकिन आपने मेरे लिए शुद्ध भक्त का व्यवस्था ही नहीं किया, तो मैं किसको मिलूं। और भगवान अपना वचन ऐसे इस तरह से फेल नहीं करने देते। तो अगर वो कह रहे हैं अर्जुन को, हम सबके उपलक्ष में, जीव के उपलक्ष में कह रहे हैं कि आपको शुद्ध भक्त का सहारा लेना पड़ेगा, तो वो शुद्ध भक्ति व्यवस्था भी उनको करनी पड़ती है और वो करते हैं। केवल इच्छा उत्पन्न होने से कि मुझे गुरु चाहिए, तत्क्षण गुरु प्रकट हो जाते हैं आपके जीवन में, और हृदय से अनुभूति होती है कि हाँ ये मेरे गुरु हैं, मैंने इच्छा किया था, भगवान ने उसका रिस्पॉन्स दे दिया। तो भगवान पर भी श्रद्धा उत्पन्न होती है जैसे ही गुरु जी का दर्शन होता है, क्योंकि आपने उनसे प्रार्थना किया था, उन्होंने गुरु जी का तुरंत आपके लिए व्यवस्था किया और उनकी कृपा से भगवान की प्राप्ति हुई। ये ट्रायंगल है ना, बिल्कुल अच्छी तरह से पूरा हो जाता है केवल श्रद्धा के माध्यम से। इसलिए हर समय हमारे जीवन में जितने संत हमको मिलते आ रहे हैं, उनके लिए हमें कृतज्ञ रहना चाहिए ऑल द टाइम, क्योंकि जीवन के इस भयंकर जंजाल से मुक्त होने का एक ही रास्ता है, वो है संत का संग। और बाकी सारे जितने नियम है ना हमारे, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना है, धाम में निवास करना है, तुलसी की सेवा करनी है, भगवान नाम का जप करना है, चार नियम के पालन करना है, भगवान के भक्तों की, भगवान के गुरु जी के आदेश की सेवा करनी है, ये सारा उस संघ के ऊपर आधारित होता है। उसका जो बेस है ना वो ये संघ है, संत शुद्ध भक्त का संघ है। उसके आधार पर ये बाकी सारी क्रियाएं आसानी से हम कर सकते हैं, उन क्रियाओं में परिपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं जो भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़ा आवश्यक है। लेकिन इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो संत संघ है। इसमें से एक अंग भी अगर कमजोर हो गया आपका, जब ही ठीक नहीं हुआ, दोबारा संघ में आकर उस अंग को आप मजबूत कर सकते हो। अगर आपको श्रीमद् भागवतम अध्ययन ठीक से नहीं हो रहा है, फिर दोबारा संघ में आ गए अब शुद्ध भक्त के, तो आपका भागवतम का अध्ययन फिर दोबारा रास्ते पर आ सकता है। हर एक कमजोर भक्ति के अंग को अपने जीवन वाले हम मजबूत कर सकते हैं अगर हम भगवान की शुद्ध भक्त का संग जो है करते रहेंगे। तो आप कहेंगे रोज तो शुद्ध भक्त का संग मिलता नहीं है, तो शुद्ध भक्त की वाणी तो हमारे पास है ना, अभी इतना टेक्नोलॉजी आगे चला गया है, सभी शुद्ध भक्तों के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे लिए उपलब्ध है, शुद्ध भक्त की किताब उपलब्ध है, उनका संग उपलब्ध है। उनके प्रभुपाद जी ने भी कहा था कि मैं जाऊँगा तो मैं जाऊँगा नहीं, मेरे किताबों में जीवित रहूँगा मैं, कभी भी आप मुझे मिल सकते हो और किसी भी समस्या का समाधान आपको मेरी किताबों से प्राप्त हो सकता है। तो जब आप पुस्तक वितरण करेंगे अभी इस अगले मैराथन में, आप जो संग उनको नामुमकिन है, जो है ही नहीं इस दुनिया में, है ना, चले गए हैं वो कभी 77 में चले गए, उनका जन्म भी 80 में हुआ है, ऐसे व्यक्ति को आप किताब दे रहे हो, तो जो नामुमकिन चीज है वो उनको आप दे रहे हो मुमकिन करके, उसी संग को प्रदान कर रहे हो। ठाकुर भक्तिवृंद ने भी इस वाणी को किया था कि सत्य भक्त जाते नहीं कभी, अपने वाणी के रूप में सदैव जीवित रहते हैं और अपनी वाणी के द्वारा उनकी कृपा सब पर अनंत काल तक बरसाते रहते हैं। तो ये भाव होना चाहिए हमारा। और दिव्य स्तर पर कोई नामुमकिन चीज नहीं होती है, दिव्य स्तर पर जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल हो जाता है। प्रभुपाद भी कई भक्तों के स्वप्नों में आकर आदेश देते हैं, अभी भी उनकी इच्छा है जब चाहे तब दे देते हैं, लेकिन नहीं भी आएंगे स्वप्न में आदेश देने के लिए, वो अपनी किताब में शरीर से ना होते हुए भी आपको निरंतर आदेश उपदेश दे रहे हैं, गाइडेंस मार्गदर्शन दे रहे हैं, जो हमारे जीवन के परम कल्याण के लिए पर्याप्त है। लेकिन इस बात पर हमको पूरी तरह श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए कि संत जो है वो परम दुखमय स्थिति में भी मंगल कर सकते हैं। और जो ये धारणा रखते हैं किसकी संत में ये क्षमता है, उनको भगवान ऐसे अनुभव भी कराते हैं जो उनकी श्रद्धा के अनुकूल हैं। समझो आपको लगता है कि संत में क्या शक्ति है, क्या कर सकते हो, अभी मेरे समस्या ऐसे है तो ये संत कर ही क्या सकते हैं, ऐसा आपके धारणा होगी मन की, तो कुछ नहीं होगा, वैसे ही होगा जैसे आपके मन में धारणा है। लेकिन आपके मन में ऐसे धारणा है कि संत की कृपा से कुछ भी हो सकता है, तो वो जो नामुमकिन वाली घटना है वो भी होते हुए आपको नजर आएगी। जैसे कृष्ण भगवान रो रहे हैं बहुत। पहले कुछ समय पहले यशोदा मैया ने वो शिव जी को ऋषि के रूप में आए तो उनको भगा दिया था कि नहीं आपको दर्शन देगा, आप राक्षस हो, आप ऋषि का रूप धारण करके मेरे बालक की हत्या करने के लिए आए हो, चले जाओ यहाँ से। और फिर जब बालक रोता है बहुत भयंकर रोता है तो पूर्णमासी क्या बोलती है, अरे इतना बालक रो रहा है कुछ करना चाहिए। वो संत को बुला, अभी तक गए नहीं, वो उधर ही बैठ कर रो रहे हैं और आपको पता नहीं है संत की कृपा से क्या चमत्कार नहीं हो सकता, हो सकता है बालक रोना बंद करेगा। तो सदा को श्रद्धा थी, तुरंत उसी को जिसको भगाया था कुछ समय पहले उसी का स्वागत करने के लिए सखियों को भेजा और सम्मानपूर्वक उसको बुला के लेके आए। और जैसे वो आए भगवान ने रोना बंद कर दिया। भगवान ने भी संत की महिमा प्रकट करने के लिए, भक्त की महिमा प्रकट करने के लिए लीला किया ये कि मेरे भक्त मेरे को कितने प्रिय है, चाहे तुमने मेरे मुझे अपने प्रेम बंधन में बांध कर ऐसा बंद कर लॉक करके रखा हो, लेकिन फिर भी मैं संत का गौरव करूंगा ही करूंगा। तो रोने का आश्रय निकाला और इतना रोए कि संत का गौरव उसमें प्रकट हो गया। वो आकर स्पर्श किया, तुरंत रोना बंद कर दिया उन्होंने। तो ये हम सब लोगों का परम भाग्य है। गौरांग महाप्रभु के संप्रदाय में आंदोलन में हम लोगों को ऐसे प्रकार के संतों का दर्शन और संग उपलब्ध है जिसको हम बाहरी रूप से पहचान सकते नहीं कि ये कोई चमत्कारी है, जादूगर है, क्या है, लेकिन उनके संग से भगवान आप पर अनंत कृपा बरसाते रहेंगे क्योंकि आपने उनके प्रिय भक्तों का संग करने का तय कर लिया है कि मुझे इनका संग करना है, ये प्रामाणिक भक्त का संग मुझे करना है। तो भगवान अनंत कृपा हम पर उसी एक भावना के कारण बरसाते रहेंगे। अगर आपको उनके भक्त पर, उनके भक्ति करने वाले संत पर श्रद्धा है, ये भगवान के लिए बहुत आनंदनीय बात है। केवल उस श्रद्धा आपके मन में है, इसी कारण आपके जीवन में हर समय मंगल होते रहेगा क्योंकि आप उनके प्रिय भक्त पर श्रद्धा रखते हो कि इनके द्वारा मेरे जीवन में परम कल्याणकारी घटनाएं हो सकती हैं। श्री वैष्णव ठाकुर की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कोई का किसी का प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। Simply avoid hearing if you are not concerned with that. अगर आपका उस स्थिति में कोई कनेक्शन नहीं है सेवा के माध्यम से या किसी भी रूप में और केवल ऐसे ही डिसकनेक्टेड अनकनेक्टेड निंदा आपको सुनाई पड़ रही है तो आपको तुरंत उसको कट करना चाहिए। अगर उस स्थिति में आप कुछ कर सकते हो, समझो आपके हाथ में कुछ है, तो आप ज़रूरी चीज़ें उतनी सुन सकते हो और करेक्शन करने के लिए प्रयास कर सकते हो, लेकिन आप उस अधिकार में नहीं हो तो आपको वो भी नहीं करना चाहिए। अगर हम उस प्रोजेक्ट में इंचार्ज हैं या और कुछ हमारी ऐसे अधिकारी स्थिति है जिससे वो सुनने के बाद में आपको सुधार लाने की संभावना है, आपके पास वो शक्ति है या पावर है, तो आप ज़रूरी उतना सुन के उसको करेक्शन करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अगर वो भी नहीं है तो आपको वो सुनना ही नहीं चाहिए। पर आपको लगता है कि ऐसे व्यक्ति के अपराधपूर्ण कार्य हमारे मंदिर में हो रहे तो हमारे ओवरऑल मंदिर में नुकसान पहुंच सकता है, तो आपके अथॉरिटी को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप ज़रा देख लीजिए इसको क्या कर सकते हो, लेकिन जहाँ तक हमारा अधिकार नहीं है हमको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन कलयुग का कैसा रहता है स्वभाव कि जहाँ से भी कोई थोड़ी निगेटिव बात आने लगी ना, हमारा चाव उसमें बढ़ जाता है, तुरंत हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, हम लोग उसको एक बार नहीं दस गुना बढ़ाकर सुनना और बोलना चाहते हैं। ये कलयुग का एग्जैक्ट विपरीत स्वभाव है। केवल कलयुग में होने से ऐसी प्रवृत्ति अचानक, अच्छा ऐसा क्या, ओह रियली, ऐसा हमारा तुरंत भाव उत्पन्न हो जाता है, कान बंद नहीं होते तुरंत हमारे और खुल जाते हैं सुनने के लिए। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि निंदा करने वालों के भक्तों के आसपास भी रहना नहीं चाहिए। अगर कोई भक्त निंदा कर रहा है तो या तो आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए कि आप उसका मुंह बंद कर सकें, या तो आपको चले जाना चाहिए यहाँ से, या तो अपने अथॉरिटी को बताना चाहिए कि ये डिस्टर्बेंस हो रहा है। लेकिन हृदय में ऐसे निंदा के विचारों को पना नहीं देनी चाहिए, चाहे वो सच भी हो जाए, सच भी है समझो कि हाँ ऐसे एक्चुअली घटना हुई है और हमने देखा भी है और मैं उसका साक्षी भी हूँ, सब कुछ सही है, फिर भी ये निगेटिव विचारों को मन में थरा देना नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे ही ये निगेटिव नकारात्मक विचार मन में बैठ जाते ना, भले सत्य के आधार पर भी बैठ जाते हो, लेकिन वो अंदर गंदा ही पैदा करते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, सत्य भी होने पर भी अगर आप निगेटिव नकारात्मक विचार किसी के बारे में मन में रखते हो तो वो अपने आप शांत नहीं बैठते, अंदर जाके पनपते हैं, अंदर परवरिश होती है उनकी और अच्छे अच्छे विचारों को नष्ट करके वो अपना स्थान बना लेता है वहाँ पर, और फिर वो अनएंडिंग स्टोरी है, ख़त्म ही नहीं होती वो स्टोरी, चलती रहेगी, वो चलती रहेगी, क्योंकि आपने सत्य के आधार पर उसको सुना ना, आपने आप भी साक्षी है और आप जानते भी हो कि सत्य है, और तब तो इस पर शक्ति भी आ गई ना उसके अंदर, तो फिर आपको छोड़ेंगे नहीं वो शब्द और वो विचार, वो हृदय में बस जाएंगे आपके, और जन्म जन्मांतर के लिए आपके मन में उस भक्त के लिए निगेटिव विचार परमानेंट करा देंगे उसको। लेकिन भगवान जब स्वयं बोल रहे हैं कि अपि चेतु सदा शुद्ध दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, भगवान अगर उसको माफ़ करने की भावना रखते हैं, सुधारने की भावना रखते हैं, तो हमको भी रखना चाहिए। जिनका भजन करने वाले भजन कर रहे हैं वो जिनको प्राप्त करना चाहते हैं, वो उनके प्रति क्या भाव रखते हैं कि चलो कुछ समय के लिए मैं उसको अंदर से सुधार दूंगा, उसका परिवर्तन करके उसको सही रास्ते पर लाऊंगा, क्योंकि वो सही स्थिति में स्थित है, मतलब एक सही रास्ते पर स्थित है। अगर वो सही रास्ते पर स्थित है तो फिर हमको उसके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। हालांकि मैं जो कह रहा हूँ वो बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं जानता हूँ बहुत कठिन बात है, लेकिन अगर हमको एक दिन भगवान की प्राप्ति करनी है तो ये सब हमको करना ही होगा। भक्ति में ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो आसान नहीं होती हैं, बहुत मुश्किल होती है, तो इसलिए हम लोग छोड़ नहीं देते ना उसको। हमको मालूम है कि मुश्किल है, लेकिन मुश्किल है अगर योग्य है, श्रेष्ठ है, तो हम उसके लिए मेहनत करेंगे। और दुनिया में वैसे आसान क्या है, पैसे कमाना भी आसान नहीं है। तो आसान किस चीज़ की आसानी आप देख रहे हैं, किसी चीज़ में आसान है ही नहीं कुछ। तो बेटर हमारी जो मुश्किलें हैं वो हम भक्ति मार्ग की मुश्किलें अपनाएं, है ना। यहीं पर अगर पैसे कमाने की मुश्किलें अगर हम लोग अपना रहे हैं, उसमें जूझ रहे हैं भौतिक माया के साथ में, तो बेटर ये है कि हम दिव्य जो योग माया है उसके अंदर जो मुश्किलें हैं उसका सामना करने का प्रयास करना चाहिए। इट्स बेटर, बेटर बैटल। अगर बैटल करना ही है तो दुनिया में क्यों करें उसको, भक्ति के जीवन में बैटल करेंगे तो अच्छा है। तो ये विचार कठिन है इस तरह से पालन करना और आचरण करना, लेकिन बेटर बी वर्क हार्ड फॉर इट। हाँ,
अवर गुड रिलेशनशिप पीपल आल्सो दे स्पीक समथिंग, सो इफ यू लीव इट इज हर्टिंग,
देन यू शुड बी ऑनेस्ट, देन यू शुड ऑनेस्ट बी विद देम, प्रभु प्लीज we are good friends, I love you, but I don't want to associate in criticizing others with you. अगर वो honesty, प्रामाणिकता हमारे रिश्ते के लिए अनुकूल है तो उसको बोलने में हमको कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हमको सत्य को ना दूसरे को बताने में अच्छी तरह से बताने का कुशल हमारे अंदर होना चाहिए, उतनी हिम्मत भी होनी चाहिए। हम बोल ही सकते नहीं, हाउ कैन आई टेल हिम, ऐसा होगा तो फिर उसका भी कल्याण नहीं होगा और आपका भी कल्याण नहीं होगा, और हमको केवल संकोच है और हम बोल नहीं पाते हैं, तो संकोच होने से कितनी समस्या पैदा होती है आपको। केवल सत्य बताने में हमारे अंदर संकोच है और हमारे अंदर पर्याप्त करेज धाड़स नहीं है, इसके वजह से कई समस्याएं पैदा होती। तो बेहतर यह है कि हम आगे जाकर 10 गुना कठोर शब्द वचन बोलने के बदले में अभी 1 गुना थोड़ा कठोर बोलकर उसको अगर समझा सकते हैं तो अच्छा है। आपका परम मित्र है, आपका संग उसके लिए ज़रूरी है, उसका संग आपके लिए ज़रूरी है, और ऐसा ही भक्त अगर उस भाव में आ गया तो उसको प्रभु प्लीज़ वी हैव टू स्टॉप इट हियर, ऐसा बोलना चाहिए। अगर पत्नी आपको बता रही है, पति पत्नी को बता रहा है घर पे समझो, या गुरु भाई को बता रहा है, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी को बता रहा है, जिसका संग आपको ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि पत्नी ने किसी का निंदा कर लिया पति को छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। वैसे ही उस भक्त को छोड़ के चले जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना, आपको वहीं रहना है, वहीं सेवा करना है। तो बेटर बी ऑनेस्ट and straightforward. वो भी आपको जाके आगे अप्रिशिएट करेगा कि प्रभु जी आपने मुझे सही समय पर बचाया, मैं तो बिल्कुल उसमें बहकाव में आ गया था, सत्य था लेकिन मुझे उसमें जाने से आपने बचाया। तो ही विल बी ग्रेटफुल टू यू इन द कोर्स ऑफ टाइम। बेटर टू बी ऑनेस्ट इफ यू आर कन्विंस्ड, बेटर टू बी ऑनेस्ट एंड सेव ईच अदर। और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ, और एक प्रश्न पूछे। By hearing them carefully. हाँ, you have to just listen, that's all. कान जो है ना, मनुष्य के कान जो है ना, श्रवण जो इंद्रिय हमको दिया है ना, ये मनुष्य में सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय है। सारा आध्यात्मिक जीवन का परिवर्तन जो भी होना है वो कान के माध्यम से ही होता है, आँखों से बाद में होता है ना। तो अगर हमको भक्ति मार्ग में हम आ रहे हैं, और भक्ति मार्ग में आने से क्या होता है, सद सद विवेक बुद्धि जागृत होती है। जप करने से, चार नियम पालन करने से, और साथ भक्तों के साथ रहने से, जो भी कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, उससे जो सद सद विवेक बुद्धि पहले नहीं थी, अभी वो उत्पन्न होती है। और सद सद विवेक बुद्धि उत्पन्न होने से क्या होता है कि हम बहुत केयरफुली सुनते हैं और उसमें फिल्टर भी करते हैं उस बुद्धि के आधार पर कि इसमें से कितना लेना है और कितना छोड़ देना है। कई चीज़ सुनने को मिलती है लेकिन सत्सद विवेक बुद्धि हमको एक फिल्टर के रूप में बचाती है। तो अगर हमको कुछ करने में अगर हमको कोई लग रहा है कि गलत हो रहा है और कोई हमको बता रहा है, तो उसका बताना केवल अहम के स्तर पर त्याग नहीं देना चाहिए कि हु आर यू टू टेल मी, हु यू थिंक यू आर टू टेल मी ऑल दिस थिंग्स। ऐसा सोचने के बदले में एक दो क्षण विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए उसके ऊपर कि क्या है इसमें, सब्सटेंस है कि नहीं है, कि बेकार है। धुतकारने के पहले दो क्षण विचार करने में कोई नुकसान नहीं है। चाहे वो नौ सखिया भक्त कल आया हुआ बता रहा है आपको, उसकी क्या पोजीशन है मुझे बताने की, ऐसा हो सकता है। लेकिन सोचने में कोई नुकसान नहीं है। सत्सद वे बुद्धि आप तो प्राप्त कर ही रहे हैं सत्संग की आजा से, और यहाँ पर रहने से, और प्रसाद खाने से, और सेवा करने से, वो बुद्धि हमको अनायास प्राप्त हो रही है। तो उसको हमको ऐसा इस्तेमाल न किए बिना छोड़ना नहीं चाहिए, उसको उपयोग करना चाहिए। और वार्निंग तो वार्निंग ही होती है, वो जिंदगी भर वार्निंग मिलेगी नहीं मिलेगी आपको, कुछ समय के लिए मिलेगी। सतर्क रहना हमारा काम है। भक्त का मतलब क्या है, इज़ वेरी संवेदनशील, बहुत अलर्ट और सेंसिटिव होता है भक्त। वो किसी भी चीज़ को स्वीकार या अस्वीकार करने में ऐसा सहज नहीं कर लेता, वो स्वीकार भी सोचकर करता है, अस्वीकार भी सोचकर करता है। दैट इज़ डिवोटी। डिवोटी मतलब उसके सारे इंद्रिय जो है ना, वो आम आदमी से अधिक संवेदनशील होते हैं, हर इंद्रिय। और सुपर फाइन मतलब सूक्ष्म स्तर पर उसके बहुत उत्तम प्रकार के इंद्रिय होते हैं, उसके डेवलप होते हैं। वैसे उसको भोजन करते पता चलेगा कि ये भोजन प्रेम से बनाया है कि गुस्से से बनाया है कि द्वेष से बनाया है। और प्रेम से बनाया भोजन उसको तुरंत जबान बताती है उसको कि ये प्रसाद जो है ना वो बड़े प्रेम से बनाया है। वो फाइव स्टार ऑपुलेंट आइटम नहीं है लेकिन उसमें प्रेम है बहुत, ये आपको पता चलेगा। तो ये भगवान की कृपा है हमारे ऊपर कि हमारे इंद्रियों को सुपर फाइन बना रहे हैं। अब पहले हम लोग ये मछली के स्मेल के बीच में बिल्डिंग में रहा करते थे, आज हमको उससे उल्टी आने लगती तुरंत, तभी उल्टी नहीं आती थी। इसका मतलब क्या हुआ, आज हमारे वही इंद्रिय जो है, घ्राणेन्द्रिय जो है हमारा, वो सुपर फाइन लेवल पे चला गया है। इसलिए हमको वो चीज़ जो पहले अच्छी लगती थी, खुशबू आने के बाद भूख लगती थी उसके बाद, वो आज हमको उल्टी आती है उसी की चीज़ को। हमको भी आश्चर्य होता है कि उसी चीज़ में हम लोग 20 साल रहे और उस स्मेल को देखकर हम लोग स्टिमुलेट होते थे संडे को, और आज वो स्मेल देखते हैं हमको उल्टी आने लगती है, भागना पड़ता है वहाँ से। तो क्या हो गया बीच में, हमारे इंद्रिय जो एक स्तर पर थे तमोगुण के थे, वो इंद्रिय सत्वगुण के स्तर पर आ गए अभी। तो ये हमारी हमारा भाग्य है ये कि हमको भगवान उस अनुभव को दे रहे हैं। लेकिन वो जब सुपरफाइन हमारी इंद्रिय शुद्ध होते हुए जा रही हैं, उसका उपयोग भी भगवान की सेवा में करना चाहिए ना अल्टीमेटली। तो ऐसे ही कान में अगर वार्निंग मिल रही है तो उसको दुर्लक्ष नहीं करना चाहिए। उसको संवेदनशीलता के साथ में मंथन तो जरूर करना चाहिए बिफोर यू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय हो। और प्रश्न है क्या? ठीक है, थैंक यू।